नमो नमो श्रीसेदानं नमो नमो आयिर्यानं नमो नमो वज्रायानं नमो नमो लोए सब चाहूनम पंच परमेश्वरी भगवान की जय बोलो। 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी की जय बोलो। 108 परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय बोलो। परम पूज 108 श्री गुरुवर नेमी सागर महाराज की जय गुरु। परम पूज 108 मुनिवर क्षमा सागर महाराज। बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल। बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल। और हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। ठीक है, समझ में आई? ऐसा हमारा श्रावक है, समय निकल गया, समय देख लिया कि कितने ही नौकर लगे हैं, शाम के भोजन का समय हुआ। भैया बड़े प्रेम से कह रहे, भैया जाओ तुम, जाओ तुम अंथव करके आओ, तुम जाओ अंथव करके आओ। आई समझ में? कह रहे हैं और भैया अब हम जा रहे हैं। कितने भाव, कितने प्रिय अपने समाज के प्रिय, कि इनका भी हमें ना गड़बड़ हो जावे, रात्रि को भोजन नहीं खान देने, इनका भी धर्म रहे और ये धर्म इनका रहेगा तो मेरे लिए तो मिलेगा। लोभ पाप का बाप बखाना, लोभ नहीं कोई प्रकार का नहीं, जो मिलेगा मिलेगा। ऐसे उन पुरुषों की भी दो पुत्रियां थीं, एक का नाम था गुलाब बाई और दूसरी अभी छोटी हैं। जब हम महिलाश्रम में बड़ी बिल्डिंग का ठेका लिए तब वे गुलाब बाई वहां पहुंची थीं इतवार के दिन। दो चार बच्चियों को बुला लिया घरे और सामग्री सब लाए हैं साथ में, आई हैं वहां पर, सामने भोजन शुद्ध बनवा रही हैं, सामने बच्चियों को सिखा रही हैं। उनको का मतलब थी, उनके पांच लड़का सबके बड़ी बड़ी फैक्ट्री दुकानें, उन्हों का जरूरत थी कि दूसरों की बेटियों को सिखाएं? नहीं, इस प्रकार बिछानी डालो, इस प्रकार आटा उसनो, इस प्रकार।
करते हैं इसी भावना के साथ कि चातुर्मास का पुण्य संयोग हमें प्राप्त होगा, और अब हम अनुरोध करते हैं कि वे अपनी मंगलवाणी से हमें कृतार्थ करें।
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोतानि जाति हरे अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। सभी लोगों ने कल अपने जीवन को इस तरह से जिए कि मरण भी सार्थक हो सके, इस पर विचार किया था। मरण की अनिवार्यता, और इतना ही नहीं, उस मरण से बचाने वाला कोई नहीं है, ये एक मर्मभेदी सच्चाई। इन दोनों को जान लेने के बाद हमारा अपना पुरुषार्थ या प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम जीवन इस तरह से जिए कि जीवन के अंतिम क्षणों में अपने ही जीवन से हमें शिकायत न रह जाए। किसी और से तो शिकायत न रहे, लेकिन अपने आप से भी शिकायत न रह जाए कि जीवन मेरा जैसा मुझे जीना चाहिए था वैसा मैं जी नहीं पाया। परिस्थितियां कितनी अनुकूल प्रतिकूल थीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी अपनी कहां कमजोरी रही, जीवन के अंत में यह बात मन को बहुत दुख पहुंचाती है कि मैं कितने मौकों पर चाहता तो अपनी उस कमजोरी को दूर करके अपने आप के जीवन को अच्छा बना लेता, लेकिन जीवन के अंत में इस बात का स्मरण आने पर शेष जो व्यतीत जीवन है उसमें कहीं कोई सुधार करने की गुंजाइश नहीं है। बेहतर यही तरीका है कि हम इससे पहले कि जीवन का अंत आए, जितना समय हमारे पास शेष है हम उसे इस तरह जिए कि जिससे जीवन के अंतिम क्षणों में हम कह सकें कि जितना जीवन हमें मिला हमने उसे सार्थक किया है। यदि हम अपने जीवन को सार्थक करते हैं तो ही हमारे अपने आगे के जीवन में हम जन्म मरण की प्रक्रिया से पार हो सकते हैं। एक कक्षा में यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे उसी कक्षा में फिर से पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही जब तक हम इस संसार की कक्षा में फेल होते रहेंगे, जब तक हम अपनी अज्ञानता और आसक्ति ज्यों की त्यों बनाए रखेंगे, हम ज्ञान और अनाशक्त दशा को प्राप्त नहीं होंगे। तब तक इस संसार में हमें बार बार पढ़ने के लिए आना ही पड़ेगा, हम उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। संलेखना हमारे जीवन की उत्तीर्णता का मापदंड है। हमने जीवन के अंत में अगर ठीक ढंग से अपनी देह को छोड़ा है तो हम उत्तीर्ण हो गए हैं, और उत्तीर्ण हो गए हैं तो फिर से हमें उस कक्षा में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए हम जीवन रहते हुए उस संलेखना के कॉन्सेप्ट को समझ करके और तैयार रहें कि जब भी ऐसा अवसर आए मैं संलेखना ग्रहण कर सकूं। संलेखना शब्द कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन है नहीं कठिन। समतापूर्वक छूटती हुई देह को छोड़ देना, देह को जबरदस्ती नहीं छोड़ रहे हैं, देह छूट रही थी इसलिए मैंने समता धारण कर ली। अभी तक मैं देह के छूटने पर आकुल विकल होता हूं, अब मैंने ये जान लिया है कि आकुल विकल होने से तो पुनः देह मिलेगी, मैं इस देह को छोड़ दूं, यथा वाशाओं सी जीर्णानी विहाय, जैसे कि कोई जीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके सहज भाव से नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक ऐसे ही भाव से मैं अपनी इस जीर्ण होती हुई देह को जो छूटने को तैयार है सहज भाव से छोड़ दूं। लेखन जो है वो तनुकरण को कहते हैं, डाइल्यूट करना, किसी भी चीज को धीरे धीरे करके क्रश करना। संलेखना में दो चीजें अनिवार्य हैं, एक देह और दूसरा कषाय, इन दोनों को हम धीरे धीरे करके क्रश करते चले जाते हैं। देह तो क्रश होती ही चली जाती है, क्योंकि शीर्यन्ते इति शरीराणि, शरीर के मायने यही है कि वो निरंतर जीर्ण शीर्ण और क्रश होता चला जाए। उस शरीर के क्रश होने के साथ साथ मेरी कषायें भी क्रश होती चली जाएं, ये मेरा अपना पुरुषार्थ, इसी का नाम संलेखना है। हम लोग रोज रोज मरण से गुजरते हैं, लेकिन वह मरण हमारे देखने में नहीं आता। वह मरण ठीक ऐसा है जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी में समा जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर समा जाती हैं। ठीक ऐसे ही हम सांस लेते हैं, वे सांसें चली जाती हैं, हम दूसरी और सांसें लेते हैं, और सांसें लेते चले जाते हैं, निकलती चली जाती हैं। यह आवीची मरण जैसे कि लहरें उठती हैं और नष्ट हो जाती हैं, ऐसे ही जो है हमारा निरंतर मरण होता रहता है। हम रोज रोज जीते हैं, रोज रोज मरते चले जाते हैं, फिर वो एक दिन जब पूरी सांसें हो जाती हैं उसे हम मरण कहते हैं, पर देखा जाए तो वो सांसें रोज रोज हमारी कम होती चली जा रही है। वास्तव में तो हम रोज ही मरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसको आवीची मरण कहते हैं। और जब कभी ऐसा मरण करते करते और एक दिन हम अज्ञानता पूर्वक, असावधानी पूर्वक, बिना किसी व्रत नियम संयम के, बिना किसी श्रद्धान के और अपनी देह छोड़ देते हैं, तब उसे बाल बाल मरण कहते हैं। ऐसा मरण हमने कई बार किया है। कभी हमारे जीवन में यह सौभाग्य मिले कि हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा पूर्वक, भले ही हम अपने जीवन को बहुत संयमित नहीं बना पाए हैं, पर हमारे मन में श्रद्धा का दीपक जल गया है। उस श्रद्धा के दीपक के जलने पर फिर यदि हम मरण को प्राप्त होते हैं, तब उस मरण को बाल मरण कहते हैं। बाल बाल मरण तो नहीं है, वह बाल मरण अवश्य है, लेकिन यदि हम श्रद्धा के साथ साथ अपने जीवन में थोड़े बहुत व्रत नियम का पालन करते हुए इस देह को छोड़ते हैं, तब उसे बाल पंडित मरण कहते हैं। और अगर महाव्रतों को धारण करके सच्ची श्रद्धा के साथ कोई समता पूर्वक अपनी देह को छोड़े तो उसे पंडित मरण कहते हैं। और जब कोई केवली भगवान अपने आयु के शेष भाग को व्यतीत करके और अपनी इस मोर्टल बॉडी को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, फिर कभी वे इस देह को धारण नहीं करेंगे, उनके इस मरण को निर्वाण कहते हैं, उसे पंडित पंडित मरण कहते हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अज्ञानता, अश्रद्धा और आसक्ति जो आज तक मरण के समय रही है, उससे हम मुक्त हो सकें, श्रद्धा पूर्वक, हो सके तो व्रत नियम पूर्वक, और हो सके तो महाव्रत के साथ साथ, और हम अपने जीवन के अंतिम क्षण व्यतीत करें, तो वही हमारे जीवन की सार्थकता है। इस प्रक्रिया को हम समझ लें, क्यों जरूरी है ये, क्यों ये बार बार इस चीज के लिए कहा जा रहा है कि ठीक ढंग से और जीवन के अंत में और हम अपनी देह को छोड़ें। एक सेठ के यहां पर आग लग गई, सारे नौकर उस आग को बुझाने में लगे हैं, कुछ लोग सामान जो बहुत बेशकीमती है उसे बचाने में लगे हैं। सेठ जी घर के बाहर खड़े चीख चिल्ला रहे हैं, कोई भी मेरी नहीं सुन रहा है। अब कौन वहां पर सुने, लोग आग बुझाने में लगे हैं, लोग सामान बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन सेठ जी की आवाज जब तक सुने तब तक बहुत देर हो जाती है। एक व्यक्ति पास में खड़ा हुआ कहता है कि आप इतने चीख चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? तब सेठ जी ने कहा कि कोई नहीं सुन रहा मेरी बात, वो जो मेरा एक ही पुत्र है, वो जो कमरे के भीतर अभी पालने में सो रहा है, उसे भी तो कोई बाहर निकाल के लाए, मैं इतनी देर से ये कह रहा हूं। और जिस व्यक्ति ने सुना वो आग के बीच में से बामुश्किल वहां तक पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने पर देखता यह है कि उसका तो प्राणांत हो चुका है। उसकी देह को सेठ जी के पास लाके रख दिया जाता है। अब सेठ जी क्या करेंगे? जिसके लिए ये महल, जिसके लिए धन संपत्ति सब कुछ इकट्ठी करके रखी थी, जिसे अभी बचाने वाले लोग बचा रहे हैं, उस सब के बच जाने पर भी उसे भोगने वाला वह तो चला ही गया। अब वह व्यर्थ ही है। ठीक ऐसे ही जो चेतना भीतर बैठी हुई है उसे हमने नहीं बचाया, और बाकी जो उस चेतना के लिए सुख सुविधा पहुंचाने वाली सामग्री थी वो बचा भी ली या बच भी गई, तब उसके बचाने बच जाने से ज्यादा कोई लाभ नहीं होगा। इस देह और इस देह के सुख सुविधा के सारे साधन हम हमेशा बचाने में लगे रहते हैं जीवन के अंत तक, लेकिन उस देह में रहने वाले देही और उस चेतना के बारे में, उसको बचाने के बारे में भी थोड़ी सी फिक्र हमें होनी चाहिए। और वो बचती ऐसे नहीं है जैसे हम बचाने की कोशिश करते हैं। हम बचाने की क्या कोशिश करते हैं उस चेतना को? यही कि ज्यादा से ज्यादा मेरा नाम, ज्यादा से ज्यादा मेरी प्रसिद्धि, क्योंकि वो दोनों चीजें बचेंगी, नेम एंड फेम। मेरा नाम बचेगा, मेरी प्रसिद्धि बचेगी। जैसे अभी अभी पेपर में फोटो क्या आ गया, बड़े प्रसन्न हैं। मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं कि मेरा फोटो 2.5 लाख पेपरों में अब किसी नाली में पड़ा हुआ मिलेगा, किसी के पैरों के नीचे रूंधा जाऊंगा मैं। लेकिन हम खुश हैं कि ये निकल गया हमारा, और बिना पैसे के निकल गया, एंजॉय कर रहे हैं। ये चीजें जो हमें बहुत सुख देती हैं नहीं दे पाएंगी जीवन के अंत में, ये कोई चीज काम नहीं आने वाली। मैंने कितना नाम कमाया, मुझे कितनी प्रसिद्धि मिली, मुझे कितने ज्यादा लोग जानते हैं, इससे मेरा जीवन सार्थक नहीं होगा, इससे मेरी चेतना नहीं बचने वाली। मैंने अपने परिणामों में जो निर्मलता धारण की है, जिसे लेकर के मैं दूसरी गति में जाऊंगा, वो मेरे जीवन को सार्थक करेगी। हजारों लोग भी एक साथ मिलकर के एक चेतना को नहीं संभाल सकते अगर कि वो अपने परिणामों को ना संभाले। इसलिए संलेखना अपने परिणामों को संभालने की प्रक्रिया है। हम बाकी सब चीजें भले ही संभाल लें और अपने परिणाम ना संभाल पाए तो मानो सब संभालना व्यर्थ हो गया, सब प्राप्त करना व्यर्थ हो गया यदि हमने अपने परिणामों की निर्मलता प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए पहली कोशिश हमारी अपने चेतना को बचाने, अपनी चेतना को संभालने और अपने चेतना की निर्मलता को प्राप्त करने की होनी चाहिए। इस उद्देश्य से ही और ये संलेखना की प्रक्रिया की जाती है जीवन के अंत क्षणों में। कैसे की जाती है? किसी न किसी गुरु के चरणों में जाकर के इसके लिए निवेदन करना होता है, और निवेदन करने से पहले अपने घर परिवार के लोगों से उनको क्षमा करके और उनसे क्षमा मांगी। स्नेहम वैरम संगम, जिससे प्रेम है जिससे घृणा है उन सब के प्रति अब क्षमा भाव है। वे भी हमें क्षमा करें, हम भी उन्हें क्षमा करते हैं। ऐसे क्षमा भाव को धारण करके सबसे, और फिर उसके बाद श्री गुरु के चरणों में जाकर अपने जीवन के कल्याण के लिए संलेखना का निवेदन किया जाता है। एक एक व्यक्ति के संलेखना के लिए, एक मुनि की संलेखना के लिए 48-48 मुनि निर्यापक की तरह, परिचारक की तरह रखे जाते हैं, तब जाकर के संलेखना होती है। ये मैक्सिमम संख्या दी है, कम से कम 2 निर्यापक आचार्य तो एक मुनि की संलेखना के लिए होना ही चाहिए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति संलेखना ठीक से नहीं कर पाएगा, उसे अपने सारे कार्य के बीच और संभालना, सामने वाले की चेतना को निरंतर जागृत रखना, क्योंकि आखिरी समय पर जागृति बहुत कम रहती, गाफिलता बहुत आती है। गाफिलता का मतलब सिर्फ नींद नहीं, मूर्छा नहीं, चीजों के प्रति जो मन में आसक्ति है वो बहुत जागती है। आखिरी समय जैसे जैसे चीजें छूटती हैं वैसे वैसे उनके प्रति आसक्ति बढ़ती चली जाती है। उस आसक्ति से उसे जागृत बनाए रखना कि वो आसक्त ना हो सके, अनाशक्त बना रहे, इसके लिए निर्यापक आचार्य आवश्यक होते हैं। उनकी शरण में जाकर के और फिर ये संलेखना की प्रक्रिया की जाती है। तीन तरह की संलेखना होती है आज वर्तमान में, उसमें से एक ही प्रकार से संलेखना लेने का प्रावधान है। दो प्रकार की संलेखना वज्रवशभ नारायण सहनन या उत्तम सहनन को धारण करने वाले ही ले सकते हैं और सबके बस की नहीं है। प्रायोपगमन, इंगनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान, ये संलेखना की तीन विधियां हैं। हालांकि तीनों विधियों में ज्यादा अंतर नहीं है, पर सामर्थ्य का अंतर तो अवश्य है। क्रम क्रम से भोजन को घटाते चले जाना, भोजन को घटाने का मतलब भोजन की आकुलता को घटाना, हाँ ये उसके पीछे उद्देश्य है। क्योंकि जितनी चीजें मुझे आवश्यक होंगी उतनी पराधीनता होगी, और जितनी पराधीनता होगी उतनी आकुलता होगी। इसलिए जितनी कम पराधीनता हो जितनी स्वाधीनता बढ़ती जाए, इसका पुरुषार्थ करना संलेखना की पहली शर्त है। एक बार भोजन से चल जाए तो दूसरे बार का भोजन छोड़ देना संलेखना में पहला स्टेप है, ताकि दूसरे बार भोजन की आकुलता समाप्ति हो जाए। एक ही बार भोजन करना है, उसमें भी धीरे धीरे जो सॉलिड चीजें हैं, ठोस वस्तुएं हैं, जिनसे कि शरीर में मल की मात्रा ज्यादा बनती है, वेस्ट ज्यादा होता है और एब्जॉर्ब कम होता है, जीवन के अंत क्षणों में यह स्थिति जरूर से निर्मित हो जाती है सबके साथ। तब कहते हैं कि उन वस्तुओं को जो कि सॉलिड हैं कम करते जाएं, लिक्विड डाइट बढ़ाते चले जाएंगे, ये प्रक्रिया है। और उसके बाद रसों का भी परित्याग कर देते हैं और फिर निर्विकृति यानी छाछ, जिसमें अब कोई विकृति यानी कोई भी रस शेष नहीं रहा है, उसे ग्रहण करते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया है। अब इसमें तीन तरह की चीजें हो गई। ऐसे आहार को कम करते करते और यदि दूसरे की मदद भी ली जाती है, उससे सेवा करवाई जाती है या उसकी सेवा स्वीकार की जाती है, और स्वयं भी अपना माथा दर्द होने पर अपने हाथ से दबा लिया जाता है, तो यह प्रक्रिया भक्त प्रत्याख्यान कहलाती है। ये बहुत मैंने सबके लिए है, वर्तमान में भी यही प्रक्रिया लागू की जा सकती है। धीरे धीरे आहार छोड़ते जाना, दूसरे से भी अपने शरीर की सेवा करवा लेना, स्वयं भी सेवा कर लेना, अपने आप करवट भी ले सकते हैं, दूसरे से करवट बदलवा भी सकते हैं, ये एक प्रक्रिया। एक और कठिन प्रक्रिया है इससे बड़ी, इसके दूसरे नंबर पर, इंगनी मरण, जिसको कि चारे चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इस पंचम काल में भी ग्रहण किया था। उसमें दूसरे से सेवा नहीं कराई जाती है, करवट बदलनी है अपने हाथ से आप बदल लो, बदल सको तो, और नहीं है शक्ति तो जिस करवट लेते हैं उसी करवट लेते रहो, उठना है तो अपने आप बिना सहारे के उठ सको तो उठो, वरना मत उठो, खड़े हो सको तो बिना सहारे के खड़े होकर के आहार ग्रहण कर सको तो करो, अन्यथा अब आहार का भी त्याग कर दो। इतनी स्वाधीन प्रक्रिया होती है, दूसरे की मदद बिल्कुल नहीं ली जाती है, वो इंगनी मरण। और तीसरे में तो दूसरे की मदद भी नहीं और अपने प्रयत्न भी नहीं, सिर में दर्द हो रहा है तो अपने हाथ से भी नहीं दबाएंगे, इंगनी मरण करने वाले तो अपने हाथ से दबा भी सकते हैं, अपने हाथ से करवट भी ले सकते हैं, लेकिन प्रायोपगमन वाले जो मुनि महाराज हैं, साधक हैं, वे संलेखना ग्रहण करने के बाद जिस करवट लेट जाते हैं मरण पर्यंत उसी तरह लेटे रहते हैं। अगर कोई उन्हें उस बीच में उठाकर किसी गड्ढे में डाल दे और वे सिर के बल उस गड्ढे में पड़े रहें तो हिलेंगे नहीं अपनी तरफ से, और वैसे ही पड़े जीवन के अंत तक, लेकिन समता भाव पूर्वक, ये ध्यान रखना, संकलेश नहीं है, इतनी सामर्थ्य है कि कोई मन में किसी के प्रति शोभ नहीं है, जैसे कि पांचों पांडवों के ऊपर और अग्नि की भरी हुई सिगड़ियां जला देने के बाद भी और सब क्षमता भाव में लीन रहे। शरीर जल रहा है लेकिन चेतना, चेतना तो अब जली नहीं रही, चेतना तो एकदम शीतलता का अनुभव कर रही है। वह प्रक्रिया, वो प्रायोपगमन की प्रक्रिया, विचलित नहीं होंगे, हटेंगे नहीं उपसर्ग आ जाने पर। इस तरह भी ये बहुत साहसी लोगों के द्वारा किए जाने वाले जीवन के कहना चाहिए विदा का ढंग है। जीवन से विदा लेने का ये कोई एक ढंग है, बताइएगा। ये तो हम कमजोर लोग हैं जो जीवन से विदा लेते समय रोते चिल्लाते हैं, इसको उसको बुलाते हैं, दुनिया भर की शिकायतें लेकर के और जीवन से विदा लेते हैं। नहीं, जीवन से विदा लेते समय और ज्यादा ना कर सकें तो कम से कम अपनी जो भोजन इत्यादि के प्रति आसक्ति है उसे घटा लें, कम से कम जो अपने साधर्मी हैं उनके प्रति क्षमा भाव धारण कर लें। आसक्ति ना घट पाए तो कम से कम राग द्वेष तो ना रहे, सिर्फ जो है एक क्षमा भाव, एक वात्सल्य भाव साधर्मी के प्रति बना रहे और फिर हम शांतिपूर्वक अपनी देह को छोड़ दे। यह प्रक्रिया जो है वो संलेखना की प्रक्रिया है। प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है, इसके अलग अलग मैं आपको उदाहरण चाहूं कि आपको देऊं तो मेरे सामने वर्णी जी का उदाहरण है, गणेश प्रसाद जी वर्णी का तो मैंने सुना भरत है, जिनेन्द्र वर्णी जी का मेरे सामने ही संलेखना हुई, आचार्य ज्ञान सागर जी की संलेखना हमारे आचार्य महाराज ने कराई, उन्होंने हमें संलेखना के संस्मरण सुनाए और हमारे सामने 5-7 लोग और थे जिनकी संलेखना हुई। संलेखना के दौरान क्या प्रक्रिया होती है ये देख करके ही सीखा जा सकता है। सिर्फ अकेले जानकारी हासिल करने से काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिकल जब हम देखते हैं तब जाकर के उतना साहस और उतना धैर्य आ पाता है कि हाँ जब हमारे जीवन में ऐसा अवसर आएगा तब हम उस अवसर को चूकेंगे नहीं, उसका हम लाभ उठा लेंगे। वो छोटी छोटी सी बातें संस्मरण में आपको सुनाऊं, उसके पहले आपके मन में एक भावना तो होगी कि 48 मुनि महाराज एक मुनि महाराज की संलेखना कराते होंगे तो 48 लोग करते क्या होंगे, कैसा कैसी व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने लिखी हुई है। अभी तक मेरे अपने इस पंचम काल में देखने में आया है एक सिद्ध सागर जी महाराज की संलेखना और नेमावर में हुई आचार्य महाराज के सानिध्य में, लगभग 45-48 मुनि महाराज वहां उपस्थित थे। ऐसा बहुत कम संयोग मिलता है। वे 48 मुनि महाराज क्या करते हैं, उनमें से 4 मुनि महाराज सहारा इत्यादि देने के लिए नियुक्त होते हैं। उन मुनि महाराज को जिनने संलेखना ली उसे कहते हैं क्षपक। क्षपक को सहारा देने के लिए, जब उसे सहारा चाहिए, कमंडल उठाने के लिए सहारा चाहिए, पीछे उठाने के लिए सहारा चाहिए, करबट बदलने के लिए सहारा चाहिए, खड़े होने के लिए सहारा चाहिए, चर्या करने के लिए, मलमूत्र के विसर्जन के जाने के लिए सहारा चाहिए, तो 4 मुनि महाराज सिर्फ इसी काम के लिए अपॉइंट होते हैं, नियुक्त कर दिए जाते हैं। फिर 4 मुनि महाराज उस छपक को जब कभी मन विचलित होने लगता है तो समझाने के लिए, धर्मोपदेश के लिए अलग अलग समयों में 24 घंटे सजग रहते हैं 4 मुनि महाराज। फिर 4 मुनि महाराज उस छपक के लिए आहार लाते हैं, क्योंकि जहां उनकी संलेखना हो रही वहीं पर उनके लिए आहार की प्रक्रिया कराई जाएगी। आहार की जैसी प्रक्रिया है वैसी ही करना पड़ेगी। आप अशक्त हैं इससे ये नहीं फर्क पड़ता कि आप बैठे बैठे लेटे लेटे भोजन कर लो, नहीं, अगर आपके अंदर खड़े होने की, और खड़े भी ऐसा नहीं कि ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े भी ऐसे ही होना पड़ेगा, अंजुली बांध कर अब खड़े हो, इतनी सामर्थ्य अगर खड़े होने की तो ही आहार ग्रहण करना, वरना आहार का त्याग कर देना। इसलिए ये प्रक्रिया रखी है, शुरू से ही अभ्यास कराया जाता मुनि महाराज को कि जीवन के अंत में संलेखना लेने की तैयारी पहले क्षण से शुरू करो, अगर सामर्थ्य है तो ही इस प्रक्रिया को किया जा सकता। सहारा देने वाले बहुत लोग मिलेंगे पर सहारा कितना लेना है ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करेगा। कहते हैं कि आहार लाने के लिए 4 मुनि महाराज और पेय पदार्थ लाने के लिए अलग से 4 मुनि महाराज, उनका शोधन करके सब, फिर 4 मुनि महाराज उसका शोधन करने के लिए अलग से, 4 लाए हैं भोजन, 4 पेय पदार्थ लाए हैं, 4 उनके शोधन में लगे हुए, बताइए 12 लोग इतने ही प्रक्रिया में एंगेज हो गए। फिर कह रहे हैं कि मलमूत्र विसर्जन कराने के लिए 4 मुनि महाराज, उस छपक के लिए कितनी सेवा होती है, वे विदा ले रहा है, वो जीवन भर सेवा तो करनी ही चाहिए लेकिन जीवन के अंत में जरूरत है सेवा की। आज तो वृद्ध माता पिता के लिए बच्चों की सेवा मिलती ही नहीं है, अनाथालय में जाकर के और उनको कोई और उनकी सेवा करता है, क्योंकि वे त्याग तपस्या भी नहीं ले पाते हैं कि ले सकें। मैं तो उनके लिए यही सलाह दूंगा कि क्या जब कोई पुत्र अपने पिता को सेवा नहीं करता है तो उससे पहले ही पिता को घर परिवार का मोह छोड़ करके किसी साधु जनों के या कि किसी तीर्थ क्षेत्र पर अपने धर्म ध्यान में संलेखना की तैयारी करनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि जीवन से विदा लेते समय शिकायत रह जाए, जीवन से विदा लेते समय निराशा हो जावे। नहीं, विदा लेऊंगा, खुशी खुशी लेऊंगा, किसी की सेवा की आवश्यकता ना पड़े, पुत्रों से अपेक्षा ना रहे, इतना ही कर सकते। पर पुत्र का दायित्व है कि वो जीवन के अंत में है कोई पुत्र जिसने अपने पिता के लिए आज तक संलेखना पूर्वक विदा दी हो। बहुत पुत्र जन्म दिए होंगे आपने अपने अपने लोगों ने, लेकिन कोई पुत्र का नाम बताएं जिसने कि अपने पिता को जीवन के अंत में शांति पूर्वक कि जाओ विदा लो, आपने हम पर बहुत उपकार किए हैं, हम कभी नहीं भूलेंगे, हम आपकी सेवा करते हैं और आपको विदा देते हैं जीवन से, और प्रसन्नता पूर्वक हमारा मोह मत करना, हम सब अपने आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, आपने जो धर्म की परंपरा दी, आपने जो कुल की परंपरा हमें सौंपी उसका हम निर्वाह करेंगे, आप निश्चिंत होकर के जाना, आपकी जो परंपरा है हम उसको बिगाड़ेंगे नहीं, उसमें चार चांद नहीं लगा पाएंगे तो कम से कम उसे बरकरार रखेंगे। है इतना साहस, आज पुत्र उत्पन्न करना बहुत आसान है लेकिन पुत्र पना आना बहुत कठिन है। पुत्र उत्पन्न तो करने वाला कोई भी पुत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन पुत्रत्व, जैसे कि मां होना आसान है, मातृत्व होना बहुत कठिन है। कोई भी मां बन सकता है लेकिन मातृत्व का भाव बहुत बहुत, माते वालस्तितानु शास्ता, माता तो कहा गया है अरंत भगवान को, यह अरंत भगवान आप मां के समान अपने बालक जैसे मां पुत्र को सन्मार्ग पर लगाती है, तब उसका मातृत्व सार्थक होता है, अकेले पैदा करने से मातृत्व सार्थक नहीं होता। ऐसे ही पुत्र अकेले उत्पन्न हो जाने से नहीं, उसकी सेवा से, वो जीवन के अंत में क्या सेवा करता है। अजमेर में जब गया था, अजमेर के लोग बताते हैं कि करोड़ों रुपए की संपत्ति पाने वाला पुत्र अपने पिता की क्या सेवा करेगा, जो कि आचार्य, हमारे आचार्य महाराज ने अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी की संलेखना के समय 36 दिन तक जो सेवा की है, उन क्षणों को अपने ही गुरु को, और बताइए जीवन से विदा लेते समय उन्हें विदा लेने की तैयारी करवाना धैर्य पूर्वक, और वे गुरु भी धन्य हैं जिन्होंने कि अपने ही शिष्य को अपना गुरु बना करके उनके चरणों में संलेखना ग्रहण की। ऐसे उदाहरण तो बहुत दुर्लभ ही मिलते हैं आज के समय में, तो अपने जीवन में इन सब से प्रेरणा मिलना चाहिए। मलमूत्र की शुद्धि के लिए चार मुनि महाराज, वसितिका की सुरक्षा, जहां पर वो शपक लेटे हैं उसके चारों दिशाओं में चार मुनि महाराज गेट कीपर की तरह खड़े रहते हैं कि कोई उपद्रव ना करे, कोई अशांति निर्मित ना करे। इतनी इतनी बड़ी चीज, उसमें लिखा है कि कोई तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हो तो तीर्थ यात्रा स्थगित कर दे, अगर उसे मालूम पड़ जाए कि कोई संलेखना लेने वाला साधु आसपास है तो सबसे पहले उसके दर्शन करें, क्योंकि वो जीवित तीर्थ है, उसके भीतर रत्नत्र है। वो तो रत्नत्र है जहां लोगों ने प्राप्त करके और अपना कल्याण किया है, वो तीर्थ तो बाद में भी दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन ये जीवित तीर्थ है। संलेखना ग्रहण करने वाले को जीवित तीर्थ कहा है, इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ये। इसलिए चार मुनि महाराज सिर्फ वसती की सुरक्षा करते हैं, चार मुनि महाराज धर्मोपदेश देते हैं, और चार मुनि महाराज उन धर्मोपदेश देने वाले मुनि महाराजों की सुरक्षा में खड़े रहते हैं, क्योंकि विभिन्न मत मतांतर वाले लोग ऐसे मौके पर वाद विवाद और शास्त्रार्थ करने आ सकते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय, और आज भी जो है कुछ पत्र पत्रिकाएं इस तरह का निकाल देते हैं कि जैनियों के यहां तो ये सुसाइड की प्रक्रिया है, उसका जवाब देने के लिए और शास्त्रार्थ करने के लिए मुनि महाराज और उनकी सुरक्षा के लिए चार मुनि महाराज, और रात्रि भर जागरण करने के लिए चार मुनि महाराज, और सारे देश विदेश की खबरें रखने वाले चार मुनि महाराज, कहां क्या चल रहा है सब उनको जानकारी रहे, ताकि हाँ वे उन्हें सुरक्षा कर, हाँ सुरक्षित रख सकें, इतनी व्यवस्था। और आखिरी में धर्म कथा करने वाले चार मुनि महाराज, सब लोगों के लिए समझा बुझा करके और धैर्यपूर्वक, उन तक नहीं पहुंचने देंगे शपक तक, दूर से ही रोक करके उन्हें धर्म की उपदेश देंगे। 48 मुनि महाराज इस तरह एक को विदा दे रहे हैं, लेकिन कौन है वो जिसने अपने परिणाम संभाल रखे हैं वो, वरना सब छोड़ के चले जाएंगे अगर आप अपने परिणाम नहीं संभालोगे, ये ध्यान रखना। 48 आपको तब सेवा दे रहे हैं अपनी जब आप अपने परिणाम संभालें, जब आपके भीतर धर्म संभला हुआ है तब, और अगर आपने धर्म छोड़ दिया और पानी मांगने लगे तो समझाएंगे और आपके समझ में नहीं आएगा तो प्रणाम, अब आपको जैसे विदा लेनी हो वैसे करो, हम तो छोड़ने आए थे सी ऑफ करने, लेकिन आप ढंग से सी ऑफ करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर आपको जैसे जाना हो वैसे जाओ। इस तरह ये छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, जब इसको पढ़ता हूं, जब जब इसे सुनाता हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसा सौभाग्य जीवन में बहुत थोड़े विरले ही लोगों को, बहुत पुण्य चाहिए इसके लिए। आचार्य श्री तो कहते हैं कि इतना पुण्य भी ना हो, इतना भी पुण्य पल्ले में हो कि आखिरी समय गुरु मूले यति निचिते चैत सिद्धांत वारदी सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनी सन्न सन समन्वितम मरणम। मुझे जब जब भी मरण करना पड़े कोई भय नहीं है मुझे मरण से, बस इतना जरूर मिलता रहे कि या तो मेरे गुरु के चरण सानिध्य में मेरा मरण हो, या कि मुनि जन आसपास हो उनके चरणों में मेरा मरण हो। इतना भी ना हो सके तो चैत सिद्धांत वारदी सदघोषे, तब किसी जिनालय के निकट मेरा मरण हो, ताकि जिनालय से पूजा के स्वर या कि जिनालय में होने वाले स्वाध्याय के स्वर मेरे कानों में पड़ते रहें और मेरे प्राण निकल जाएं, तो मुझे ऐसे मरण से जरा भी भय नहीं है। ये चार भावनाएं जीवन भर जो भाता है उसे ही ऐसा अवसर, इतना पुण्य तो संचित करना ही चाहिए कि जीवन में ऐसा कोई निमित्त मिल जाए, कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला मिल जाए, या हमारे मन में ही नमोकार पढ़ने की भावना उत्पन्न हो जाए। ऐसा इतना तो तैयारी अपने को जीवन भर आखिरी समय के लिए कर ही रहनी चाहिए। इसमें बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं और आसान भी है, दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं, और स्वाधीनता का उदाहरण भी हमारे सामने। छोटी छोटी सी घटनाओं से अपन समझ लेते हैं, 5 मिनट और लगेंगे, 5-7 मिनट आज फिर ये प्रक्रिया अपन पूरी कर देते हैं संलेखना की। और आपको आश्चर्य होगा कि अपन ने खेल खेल में बिना किसी ग्रंथ के मदद के एक पूरा ग्रंथ पढ़ लिया है, रत्नकरंडक श्रावकाचार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, 12 व्रत और 12 व्रत के अंत में संलेखना, बची 11 प्रतिमाएं, वो भी इन्हीं सब के अंतर्गत 11 प्रतिमाओं का स्वरूप हो गया। अब अपन तैयारी करेंगे कि मुनि सकल व्रती बड़भागी, भव भोगन्ते बैरागी, वैराग उपावन माई, चित वो अनुप्रेक्ष भाई। जीवन तो श्रावक की तरह जी लिया, अब अगर कभी मन में आए कि मुनि भी बने, तो फिर 12 भावनाएं अपन कल से और देखेंगे कि 12 भावनाएं किस तरह से भानी चाहिए। आज सरलेखना के उपसंहार में वो जो छोटी छोटी सी घटनाएं हैं उन पर अपन विचार कर लें, गणेश प्रसाद जी वर्णी के जीवन का संस्मरण और आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन का संस्मरण और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन का संस्मरण, ये तीनों लगभग एक जैसे ही हैं। इनमें तीनों साधकों ने अपने परिणामों को स्वयं संभाला, संभालने वाले और लोग भी थे पर उन्होंने अपने को संभाला, इसलिए वे सार्थक हुए। आचार्य शांति सागर जी महाराज तो 36 घंटे पहले तक अपना अंतिम उपदेश देने के लिए भी और तैयार रहे, उपदेश दिया और यही कहा, भीरु नका संयम धरा, मेरा अंत में यही कहना है कि डरो मत, संयम धारण करो और संयम पूर्वक अपना जीवन जियो। आचार्य शांति सागर जी चार्य चक्रवर्ती के जीवन का वो अंतिम जो उपदेश है वो कई कैसेटों में और सुनने के लिए उपस है भी आज अपने पास उपलब्ध है, चाहे तो उससे लाभ ले सकते हैं। मेरे पास भी पड़ा हुआ, मुझे कोई व्यक्ति सुनने के लिए दे गए थे, मैंने कहा अच्छी चीज है, सुन चुका हूं, आप भी सुने। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी की किताब है वो पढ़ें, इससे अपने को प्रेरणा मिलेगी कि कैसे संलेखना की जाती है। जो गणेश प्रसाद जी वर्णी है उनकी संलेखना का संस्मरण है, उनने तो किसी को खबर ही नहीं दी थी कि मैं संलेखना ले रहा हूं, पर जो उनको आहार करवाते थे उन लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वर्णी जी ने संलेखना ले ली हो, क्योंकि धीरे धीरे रोटी कम कर रहे हैं, धीरे धीरे दाल कम कर रहे हैं, भोजन की सामग्री कम कर रहे हैं, बोलना भी अब किसी से बहुत आवश्यक होता है तो बोलते हैं, बाकी शांत जाप करते रहते हैं। तो खबर दी सब दूर, तो उसमें से जो उनके बहुत निकट थे एक व्यक्ति वो पहुंचे, वर्णी जी से पूछा तो वर्णी जी कुछ नहीं बोले, जब वो इस तरफ मुंह करके पूछते तो वर्णी जी ऐसी करवट ले लेते, फिर वो यहाँ आके पूछते कि बताओ तो वर्णी जी ऐसी करवट ले लेते, मतलब बताना नहीं है, तुम जानो पता कर लो। तो पता किया तो उनकी एक समय सार उनको बहुत प्रिय था, उस समय सार पे ऊपर जिल्द चढ़ी थी, वो जिल्द हटाई तो उसके नीचे एक कागज रखा था, उस कागज में लिखा था कि इस शरीर ने अब मेरा काम करना बंद कर दिया, इसलिए मैंने इसको वेतन देना कम कर दिया। इसने मेरा काम अब ये मेरे धर्म ध्यान में बाधक बनने लगा है, मेरा साधक नहीं बनता, ये मुझसे बहुत अपनी जास्ती करने लगा है, मैंने इसका वेतन कम कर दिया है, पहले दिन इसको इतना दिया था, दूसरे दिन इतना दिया, तीसरे दिन इतना दिया, और 8वां दिन होगा वो, तब पता लग गया कि आज 8वें दिन, तो जाकर के पता किया कि क्या क्या लिया है, जितना लिखा था उतना ही लिया, इसका मतलब है कि 8 दिन हो गए वर्णी जी को सल्लेख न लेकर के। तब फिर और भी लोग सब दूर दराज से आ गए ईसरी बाजार में और वहां पर उनकी सल्लेख। हम आपको गणेश प्रसाद जी वर्णी के बाद जो जिनंद वर्णी हुए उनकी सल्लेखना जो हमारे सामने हुई 23 मई आने वाली है, 23 और 24 मई को उनकी सल्लेखना पूर्ण हुई थी। उसके पहले वो आचार्य महाराज के पास में आए तो एक दिन आचार्य श्री ने हमको बुला के कहा कि जाओ तुम 2-3 जन और वर्णी जी को दोपहर में समय सार जी सुनाया करें। हमने कहा ठीक है महाराज जाए। गए हम, हमने वर्णी जी को 14 गाथाएं सुनाई शुरू की, वंदित तू सब सिद्धे यहां से शुरू करके। हमने कहा वर्णी जी और सुनाएं क्या, तो वर्णी जी बोलते कि गाथा तो एक ही पर्याप्त है। अरे हमने धीरे से आके आचार्य श्री से कहा कि उनकी जागृति बहुत है, वो कह रहे हैं कि 14 भी जरूरत नहीं थी, गाथा तो एक ही पर्याप्त है, उसी का चिंतन चलता रहे तो समय व्यतीत हो जाए। जीवो चरित्र दंक्षण नानठ्यू तम ही ससमय जान पोगल कम पदे सट जीव ठियम तजान पर समय। जो अपने रत्नत्रय में स्थित है वो ससमय है, जो इस देह में और कर्मों में स्थित है वह पर समय है। ऐसे स्वपर का भेद विज्ञान जिसको जीवन के अंत में है वो तो अपनी देह को पर मान के सहज भाव से छोड़ देगा। जैसे दूसरे की चीज दूसरा मांगता है तो सहज भाव से दे देते, भाई तुम्हारी है ले लो, हमारी थोड़ी है, हमारी हो तो देने में जरा देर लगे कि भैया सोच के देंगे, अब आपने दी थी हमें आपकी है तो आप ले लो, सहज भाव से दे देते। ऐसी अगर देह भी पर मान करके और छूटती हो तो छोड़ दें, ऐसा भेद विज्ञान। फिर आचार्य श्री खुद जाने लगे, आचार्य श्री का वहां धर्मोपदेश समय सारजी पर होने लगा, चलता रहा। एक दिन उन्होंने और छुल्लक दीक्षा भी आचार्य महाराज से ली 62 वर्ष की उम्र में। वो पूरी उनके जीवन की घटना सुनाऊं तो बहुत लंबा लगेगा, फिर कभी कोई अवसर आएगा तो सुनाऊंगा, अभी तो सिर्फ यही अंत में और छुल्लक दीक्षा के बाद। और एक दिन वो ईसरी बाजार के मंदिर के नीचे तलघर है उसमें हम लोग, क्योंकि गर्मी के दिन थे भीषण गर्मी, उसमें नीचे उनको लिटा के रखते थे, वहीं सेवा करते थे, तो सीढ़ियां उतर करके और उनको एक उसमें गोजी में वो बना लेते हैं कपड़े की, उसमें रख करके उनको दो लोग हम मुनि महाराज ले जा रहे थे उनको। तो ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचने पर अभी नीचे उतरना है, तब पूछते हैं उतने में आचार्य महाराज आहारचर्या से आ गए क्या। हम लोगों ने कहा आ गए, ये इंडिकेशन था कि अगर आ गए हो तो ये नहीं पूछना आप छपक से कि बुला लें क्या, नहीं ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसका मतलब एक व्यक्ति फौरन चला गया कि वो याद कर रहे हैं आपको। और हम लोग धीरे धीरे उनको सीढ़ियां उतार रहे हैं, 12 सीढ़ियां 13 सीढ़ियां हैं, नीचे की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे और फिर दूसरी बार उन्होंने कहा कि आचार्य महाराज आ गए क्या, और उतने में देखते हैं तो ऊपर की सीढ़ी पर आचार्य महाराज पहुंच चुके थे। और नीचे से उन्होंने, जैसे हम लोगों ने कहा कि आ गए वो तो आ गए, बस सीढ़ी के ऊपर ही खड़े हुए हैं, तो वहीं नीचे से ही उसी में से और ऊपर देख करके दर्शन करके कहा नमोस्तु महाराज, बस। और गर्दन एक तरफ हुई, हम तो नीचे ही नहीं रख पाए और गर्दन ढलक गई, प्राण निकल गए। ये सल्लेखना, इतना साहस, आखिरी समय तक इतनी जागृति, ये परिणामों की निर्मलता और परिणामों की संभाल का उदाहरण। और दूसरा उदाहरण देता हूं कि कहां परिणाम जब गड़बड़ाने लगते हैं तो कैसे संभाला जाता, ये तो उन्होंने अपने आप संभाल लिया। अब दूसरा उदाहरण, राजा राम जी ब्रह्मचारी 10 प्रतिमाधारी नैनागर में 1982 की घटना, आपको तो याद होगा नहीं उस समय बहुत पुरानी है। तो 1982 में, आज से माने ये समझिएगा 22 साल पहले, तो उनने सल्लेखना ली, उन्होंने सेव फल का त्याग कर दिया था, नहीं लेंगे, ठीक है, और भी बहुत चीजें त्यागी थी, पर क्या हुआ कि वो थाली जो लग के आई उसमें सेव फल उनको दिखाई पड़ गए। उनकी दृष्टि को देख करके हम लोग को लगा कि इन्हें सेव फल खाने की इच्छा तो है। आचार्य श्री से जाकर के कहा कि त्याग भले ही ले लिया है, क्योंकि आखिरी समय त्यागी हुई चीज के प्रति आसक्ति आ जावे तो सल्लेखना बिगड़ जाएगी, इसलिए छपक के सामने 56 प्रकार के पूरे भोजन सामने से निकाले जाते हैं कि किसी चीज को खाने की आकांक्षा हो तो पूरी कर लो मरने से पहले, वरना ये आकांक्षा लेकर के मरोगे तो पता नहीं हो सकता उसी में पैदा हो जाकर के। हाँ बिल्कुल, उसी चीज में जिसकी आसक्ति बनी रही है। तो लगा कि शायद सेव फल खाने की इच्छा है, आचार्य श्री से कहा, तो उन्होंने कहा कल उनके थाली में सेव फल जरूर रखना, और अगर वो इनकार करें तो कहना आचार्य महाराज ने आज्ञा दे दी, ले सकते हैं आप, ठीक। दूसरे दिन हम पहुंचे, वो भी बड़े चकित कि हमने तो सेवफल त्याग दिया था, फिर भी आज हमारे आहार की थाली में सेवफल रखे गए। तो जब वो निकालने को हुए तो हम लोगों ने कहा कि आचार्य महाराज ने कह दिया है, आपने भले ही त्याग दिए हैं लेकिन आपको अगर ठीक लगते हैं और सूट कर जाते हैं शरीर के लिए तो ले सकते हैं। अब उनका मन तो था ही, तो उन्होंने हाथ पर एक इतना सा पीस, उसका छोटा सा टुकड़ा हाथ पे लिया और मुंह में दिया, आधा ही मुंह में खा पाए और बाकी तो उनके हाथ से नीचे गिर गया। फिर दिया, फिर भी नहीं खा पाए, वो मुंह वाला भी जो है क्योंकि चबाते ही नहीं बन रहा, अब भीतर तो लिक्विड जा सकता है, आपकी आशक्ति भर रह गई थी खाने की, बाकी तो शरीर ग्रहण नहीं कर रहा, आपके मन के ग्रहण करने की आकांक्षा है पर शरीर ग्रहण करना छोड़ चुका है। तो वो भी आधा अधूरा और लार के साथ में बाहर निकल आया, तब वे अत्यंत ग्लानि से भर गए। हाँ, कि एक तो मैंने त्यागी हुई चीज ग्रहण करने का अपराध किया और फिर वो भी ठीक से ग्रहण नहीं कर पाया, धिक्कार है मुझे। ये उनके मन में यही विचार पैदा करना था, बस इसी के लिए आचार्य श्री ने इतनी बड़ी छूट दे दी। और जैसे ही वो आचार्य श्री के पास लाए उनको, तो क्या बोलते हैं कि मैंने छोड़ी हुई चीज को ग्रहण करने का अपराध किया और ग्रहण भी नहीं कर पाया, अब आज से तो जीवन पर्यंत चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, वास्तव में त्याग करता हूं, क्योंकि ये शरीर ही ग्रहण नहीं कर रहा तो मैं क्यों ग्रहण करने की आसक्ति रखूं। और फिर 3 दिन रहे वो और कोई अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया और आसानी से अपने देह को छोड़ दिया। एक वैराग्य सागर आहार जी की घटना 1985 में सारी संलेखना हो गई। हम उनको चारे चक्रवर्ती सुनाया करते थे, जब उनके पास 2-2 घंटे हम लोगों को अवसर मिलता था पूरे महाराजों को, हमको 12 बजे से 2 बजे तक का टाइम था रात में। फिर उस समय ये रात में बोलना ओलना सब खत्म हो जाता है, फिर आपको जब बोलना हो, जब जो करना हो, सबकी छूट रहती है। तो रात 12 बजे से 2 बजे तक उनको सिर्फ वही बातचीत नहीं करेंगे, सुनाने में कोई हर्जा नहीं है। नहीं तो आप ये कहने लगो कि रात में मुनि महाराज बोलेंगे क्या, वो एक्सेप्शन है, संलेखना के समय कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, सिर्फ उस छपक की सेवा करना ही मुख्य ध्येय रहता, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। तो वो सुनाया करते थे, बड़े उनके परिणाम, उनका नाम बदामी लाल था वैसे, और फिर बाद में वैराग सागर रख दिया। तो हमने एक दिन हंसी हंसी में पूछ लिया कि आपका बदामी लाल नाम क्यों था, सुकन ले हम तुम्हारे थे पल्लेदारी करते दुकान में, गल्ले की दुकान, सो कर ले हमें एकन्नी मिलती थी, और एकन्नी मतलब 6 पैसे, 6 पैसे में से 2 पैसे की 4 बादाम आती थी, और 4 पैसा रख लेते थे और 2 पैसे की 4 बादाम ले आते थे। लोग तो समोसा और आलू गुंडा खाते थे, गुंडा कहते थे वो उसको ऐसे ही बोलते थे, कि लोग तो ये खाते थे, केले हम तो 4 बादाम ले आते थे और घर से केले शक्कर में घी मिला के अपनी डिबिया में ले आते थे, उसी में फिर बादाम मिलाई और वो खा ली, बस दिन भर में 3 दफे 4-4 बादाम खाते थे और कुछ नहीं खाते थे घी के साथ में। तो लोगों ने हमारा नाम बदामी डाला। अच्छा शरीर था, ये चाय पीने वालों का शरीर नहीं था, अच्छा शरीर था, हमने भी चाय पी, हमारा भी शरीर ऐसे ही है, बादाम खाई होती तो बात अलग थी, बादाम तो महाराज ने खाई, ठीक है मजबूत है, 80 साल के बाद भी जो है शिथिलता नहीं है, शिथिलता इस मार्ग में शिथिलता का काम नहीं है, इस मार्ग में सोने और आराम तलवी का काम नहीं, इस मार्ग में तो जितनी साधना जो कर सके, देह से ही नहीं अपने आत्मबल के द्वारा, देह से साधना नहीं होती, देह तो फॉलो करती है आत्मबल को। अब उनके जीवन की घटना में सुना रहा था आपको, आखिरी समय में क्या हुआ कि उनके हाथ कपने लगे, वृद्धावस्था वैसे ही, तो अंजलि ही नहीं बंधे, छूट गई अंजलि, खड़े होकर के अंजलि बांधना कोई आसान है, अभी तो आपको लगता है कि क्या महाराज को बड़ा मजा है, अपन एक एक हाथ से, वो तो दोनों हाथ से खाते, तो आप तो एक ही हाथ से खाते, महाराज तो दो हाथ से खाते, बड़ा इजी मालूम पड़ता, लेकिन जब अस्वस्थता होती है तब ये अंजलि ऐसी जाती है और यहीं रह करके और नीचे गिर जाता, सब भीतर तक नहीं जाता, ये ध्यान रखना, जब अस्वस्थता होती है कि कमजोरी आती है तब ये आसान चीज नहीं है। तो वो अंजलि उनकी बंधे और वो जाए ऐसी, और पूरा पानी उनके होंठ से टकरा के नीचे गिर जाए, एक बार तो पानी पीने के लिए उनकी जिह्वा भी बाहर आ गई कि बाहर आकर के उस पानी को हम ले लें पी लें, क्योंकि वो तो पूरा मुड़ ही नहीं रहा हाथ और खड़े होने की शक्ति नहीं। अब ऐसी स्थिति में आचार्य महाराज चुपचाप देख रहे हैं खड़े हुए, और हम सब लोग भी खड़े हैं कि क्या होता है अब। तो आचार्य श्री हम लोगों से धीरे से बोले, ग्लास में दे दो, ग्लास में दे दो। ग्लास में दिलवा रहे हैं, ग्लास में कौन लेगा, मुनि महाराज होकर के ग्लास में लेंगे क्या? तो हम लोगों ने ग्लास में लाए भाई, ग्लास में कहा कि महाराज आचार्य श्री कह रहे हैं आप अंजलि में नहीं बन रहा, तो आप ग्लास पकड़ के ग्लास में ले लो। इनकार कर दिया, परीक्षा के क्षण हैं, आचार्य महाराज तो परीक्षा ले रहे हैं कि देखें आप अपने धर्म को संभालते हैं या कि देह को अभी भी संभालने की आसक्ति है, ये चीज है मेन। आप अपने व्रत नियम को संभालते हैं या कि इस जाती हुई देह को संभालते हैं? तो उन्होंने इनकार कर दिया और जो लोग उनको संभाले थे उनसे कहा कि बिठाल दो, बिठाल दिया। और आखिरी में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कायस्थ करने के बाद कि महाराज इस देह ने जब ग्रहण करना छोड़ दिया तो मेरा भी अब जीवन पर्यंत के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग। उतनी छोटी सी घटना भी एक शपक के भीतर इतना वैराग उत्पन्न करती है, मैं कहना यह चाह रहा हूं। और निर्यापक आचार्य का कर्तव्य है कि वो उसे आसक्ति घटाने और वैराग उत्पन्न करने का काम करता। तब जाकर के भैया आज के समय में एक अकेला व्यक्ति सक्षम नहीं है, इतना साहस नहीं जुटा पाता। अगर उसे माहौल मिले, अगर उसे लोग सहयोगी मिले तो उसके परिणाम भी उज्जवल होते हैं। अपन को भी यही कि अपने परिणाम अपन स्वयं भी संभालें और कभी कोई दूसरा भी इस मार्ग पर जाए तो उसके परिणाम संभालने में सहयोगी बने, उसको कमजोर बनाने में नहीं बने कि तुम तो ले लो, तुम तो ड्रिप लगवा लो, हाँ रात में ले लो, हम बाद में प्राश्चित दिलवा दें तुम्हें, कौन वे मरा रहे हो, हाँ ऐसा नहीं कहें उसको। तो और साहस बनवाएं कि कितनी जिंदगी, कितने टनों पानी पिया होगा, कितने मनों भोजन किया होगा, कभी तृप्ति नहीं हुई। अब चार दिन के लिए क्या इन सब चीजों को छोड़ करके संतोष धारण करके देह का परित्याग करो, ऐसे साहस पूर्वक। और अपन स्वयं भी सरलेखना ग्रहण करें, दूसरा कोई करे तो उसकी मदद भी करें, तभी हमारा जीवन भी सार्थक होगा। ऐसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, तव शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, समतारस पान किया करके सुख दुख दोनों की घड़ियों में, भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रण, मिथ्या तमनाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो आपा पर वास देखो भानु से बकानी है, अनुभवताए देखो जीवों के जताए देखो भवन सताए देखो भव्य और यानी है, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सुवाणी मस्तक नमो सदा।